आसपास यानी पूरे सारे मक्का बीच में है सेंटर, उसके अतराफ यानी पूरे जहान वालों को ये बात बता दो, उन लोगों को डरा दो जो आखिरत पे यकीन रखते हैं, वही डरेंगे ना जो आखिरत पे यकीन रखते हैं। अब जिसको आखिरत पे यकीन नहीं, उसको किताब दो, उसको नसीहत करो, कुछ भी करो, वो मानने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, वमन अज़लमु, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे कि मुझ पर वही नाजिल नहीं की गई। यानी जब बंदे को कहा जा रहा है कि इस वही पर ईमान लाओ, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं अल्लाह के रसूल पे कहीं को नाजिल हो, हमारे पे नाजिल होना था तो हम मानेंगे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला बता रही कि जिसने कहा मैं भी ऐसी चीज नाजिल कर सकता हूँ, बाज लोग बोलते थे उस जमाने में, हमारे हम भी बोल सकते हैं ऐसी कुरान, तो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला बता रही जैसी अल्लाह ने नाजिल की ऐसी कुरान मैं भी नाजिल कर सकता हूँ वो कहते हैं। तो अल्लाह ताला बता रही कि छोड़ दो इन लोगों को, देखो काश आप जालिमों को देखेंगे जब वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होते हैं और फरिश्ते ये कहते हुए अपने हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं निकालो अपनी जानों को, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जो हक का इनकार करते थे, हक का इनकार करते थे, तो अल्लाह ताला बता रही कि वो वक्त काबिले दीद होगा, यानी जब तुम देखोगे ऐ नबी कि काश आप देख सकते उन जालिमों को जब मौत की सख्तियां उनके ऊपर वो आ जाती हैं और वो उस सख्तियों में गिरफ्तार हो जाते हैं और फरिश्ते दोनों हाथ फैलाए हुए उनको अपनी यानी कहते हैं कि निकालो अपनी जानों को, आज तुम्हारी जिल्लत का अजाब तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अल्लाह पर नाहक बातें करते थे, उसके आयतों से तकब्बुर करते थे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला उन लोगों को डरा रहा है जो तकब्बुर कर, तकब्बुर क्या है बहनों, तकब्बुर क्या है, इनकार कर देना। अल्लाह ताला ने आयतों से तकब्बुर करते, आयतों से तकब्बुर क्या है कि आयतों का इनकार कर देना, मानना नहीं बात को, सुनना नहीं अल्लाह की बात को, नऊज़ु बिल्लाह। तो जो नहीं सुनते अल्लाह की बात को, जो तकब्बुर करते हैं, तो अल्लाह ताला बता रही कि मौत की सख्तियां उनके ऊपर पड़ेंगी और फरिश्ते जान निकालते हुए उनसे कहेंगे कि तुम पर आज जो है ना मतलब जिल्लत का अजाब तुम्हें दिया जाएगा, यानी वहीं से शुरू हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि वो यानी हक पे थे या बातिल पे थे, उनको पता चल जाएगा। और इंसान खुद जानता है बहनों कि वो हक पे है या नहीं है, फिर भी वो इनकार करता है। तो अल्लाह ताला डरा के उसको बोल रही यकीनन तुम हमारे पास अकेले आए हो, यानी जब वो आएगा बंदा तो अल्लाह ताला कहेगा देखो कैसे तुम अकेले आए मेरे पास, जिस तरह हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था और हमने तुम्हें जो कुछ अता किया था वो तुम अपने पीछे छोड़ आए हो, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे वो सिफारिशी नहीं देखते जिनकी बाबत तुम्हारा दावा था कि वो बचा लेंगे ये बचा लेंगे, बोलता ना बंदा इन आएंगे हमारी सिफारिश कर देंगे, उन आएंगे हमारी सिफारिश कर देंगे और हम छूट जाएंगे, अब जो करते कर लो, इसके बाद कयामत में फला आएगा सिफारिश करेगा, फला आएगा सिफारिश करेगा। अल्लाह ताला बता रहे बड़े जाम में थे ना तुम कि वो सिफारिश करेगा, कहाँ है तुम्हारे शरीक, कहाँ है जो तुम जाम करते थे कि ये सिफारिश करेगा वो सिफारिश करेगा। तो अल्लाह ताला बता रही तो अल्लाह के शरीक आज तुम्हारे से गायब हो गए, तुम्हारा यकीनन इनका ताल्लुक टूट गया और वो तुमसे खो गए जिन्हें तुम अपने माबूद समझते थे। अल्लाह अकबर। अब यहां से 95 से 110 तक यानी आखिर तक अल्लाह ताला यानी पहले ये मुश्रिकों को डराए जो अल्लाह के साथ शिर्क करते, अल्लाह की आयतों का तकब्बुर करते, ये काफिरों को मुश्रिकों को अल्लाह ताला डरा के बोल रही कि फरिश्ते आके जान निकालेंगे, तुम मेरे पास आएंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ कैसे अकेले आए तुम, जैसे अकेले गए थे ना मेरे पास से वैसे ही अकेले लौट कर मेरे पास आए। तो हमें ये आयतें देखकर खौफ आना चाहिए बहनों, खौफ आना चाहिए कि कैसे अल्लाह ताला बंदे को डरा रहा है। इसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 95 से लेकर 110 तक कंटिन्यू अल्लाह ताला की तौहीद की आयतें बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक अल्लाह ही है जो दाने से गुठली को फाड़ने वाला, जिंदा को मुर्दा करने वाला, मुर्दा से जिंदा निकालने वाला यानी मुर्दा जमीन से जिंदगी देने वाला और फिर जिंदा को मुर्दा करने वाला, कि अल्लाह है तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो, वो सुबह की सफेदी को निकालता है, उसने रात को सुकून वाला बनाया, उसने सूरज और चांद को वक्त के हिसाब का जरिया बनाया, ये सब बड़े जबरदस्त खूब इल्म रखने वाले का अंदाजा है, वही है अल्लाह, वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम इनके जरिए से खुश्की और तरी में यानी अंधेरे में उजाले में यानी मतलब खुश्की और तरी में अंधेरों में भी रास्ता पाओ। होता ना मैंने बताया था ना इससे पहले कि सितारे जो होते हैं वो बंदे को راستے کا ذریعہ بناتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے ستاروں سے سجا دیا آسمان کو, اور اس کے ذریعے سے خشکی اور تری میں اندھیروں میں تم راہ پاتے ہو. بے شک ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہی ہے جسے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار رکھا, ایک جائے امانت رکھا. ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی جو سمجھ رکھتے ہیں. وہی اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات پیدا کیے, ہر قسم کے پودے پیدا ہوئے اور ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے یعنی جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں. کھجور کے شگوفے, پھل کے گچھے اللہ نے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں. انگور, زیتون, انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, مگر ہر ایک کی خصوصیات الگ الگ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑا بابرکت ہے اللہ جس نے یہ تمام تخلیق فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت پر تم غور کرو, بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, اور اس پر بھی لوگوں نے کیا کیا, جنوں کو حصے دار ٹھہرا دیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں یہ سوم میں دیا ان لوگوں کو پھل, روزی, کھیتیاں, اتنی پوری اب تک پڑھے نا 99 آیت نمبر تک. کہاں سے بتایا تھا میں نے توحید کی آیتیں 95 سے کنٹینیو اللہ تعالیٰ 99 تک پوری اپنی توحید کی آیتیں, یعنی یہ میں نے پیدا کیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 100 میں کہ پھر بھی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ اور جنوں کو, شیطانوں کو کیا کر رہی, اللہ کا شریک بنا دے رہے, نعوذ باللہ. اور کیا کرتے, جنہوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, حالانکہ اسی نے تو انہیں بھی پیدا کیا, اللہ ہی ہے جو ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے. انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے, وہ پاک ہے ان باتوں سے, بلند ہے جو وہ بیان کرتے, اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. بدیع السماوات والا, زمین و آسمان کا بنانے والا وہی ہے, اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں, اور اس سے ہر, اور وہی ہے اللہ جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے, وہی خوب جاننے والا ہے, اور وہی ہے تمہارا رب, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا, لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر نگران ہے, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ, وہ نہایت باریک بھی ہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی, چنانچہ بصیرت سے کام, جس نے بھی مطلب بصیرت سے کام لیا, دیکھا اللہ کی آیتوں کو, سمجھا, سیکھا, اس پر عمل کیا, تو وہ فائدے میں ہے. اب رہا وہ شخص جو اندھا ہے, یعنی کتاب کے تعلق سے اندھا ہو گیا, آنکھیں بند کر لی اپنی کتاب سے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس ہدایت سے جس نے آنکھیں بند کر لی اس کا وبال اسی پر ہے. کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو واضح کر دیں گے. اے نبی, آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور مشرکین کی طرف دھیان مت دیں. ہوتا نا کہ بندہ دیکھتا رہے یہ مشرکین ایسا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے چھوڑو ان لوگوں کو, چھوڑو, بات تو بتا دی اللہ تعالیٰ, حکم تو پہنچا دیے, بس تمہارا کام پہنچا دینا ہے. دیکھو یہ حق ہے, یہ باطل ہے, پہنچا دینا, اس کے بعد چھوڑ دو ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ بتائے اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے, اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو جاتے تھے ان کے اوپر مطلب بہت غمزدہ ہو جاتے تھے, کہہ رہے یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے جیسا غم کرتے تھے, بہنوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایسا بے چین ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, تڑپ 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 کر ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے نبی, تم بس دعا کرنا تمہارا کام ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, چھوڑ دو ان لوگوں کو, یعنی ان کے پیچھے اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے, بہت فکر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بس پہنچا دینا تمہارا کام ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں, تم انہیں گالی مت دو. ایمان والوں کو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ایمان والوں تم مشرکین جس کو اللہ کے علاوہ جس کو عبادت کر رہے ہیں نا, इनको उनको, तो तुम उनको जहालत की वजह से वो उनको गाली मत दो, फिर वो जहालत से हद से गुजर कर क्या करेंगे, नौज़ बिल्लाह अल्लाह को गाली देंगे। तो हमें किसी के भी माबूद को गाली देने का हुक्म नहीं है। अगर कोई किसी की इबादत कर रहा है तो उनके माबूदों को गाली देने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला बता रहे हैं अगर तुम उनको गाली दोगे तो वो जहालत में तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे, लिहाजा गाली मत दो उनको। जैसा एक हदीस में आया ना कि बंदा जब यानी जब कोई शख्स अपने किसी किसी के माँ बाप को गाली देता है तो गोया उसने अपने माँ बाप को गाली दी। अल्लाह ताला मना करते हैं किसी के माँ बाप को गाली देने से या किसी के माबूद को भी गाली देने से, क्योंकि जहालत में वो पलटा कर तुम्हारे माबूद को गाली दे देंगे, नऊज़ु बिल्लाह। तो ऐसे गालियां उनको मत दो। इसी तरह अल्लाह ताला हर उम्मत के लिए उनके अमल में कशिश पैदा करके रख देता है। सुभान अल्लाह, नोट करने वाली बात है कि जो जो अमल करता है ना तो उसमें कशिश अल्लाह ताला पैदा, अगर आप नेक अमल करेंगे तो नेकी आपको खुश कर देगी, और कोई बुरा अमल करता है तो वो बुराई से खुश हो जाता। तो ये अल्लाह ताला ही की तरफ से है, खुशी गम हर चीज अल्लाह ही की तरफ से है। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमें किस में खुश होना है, हमें नेक अमल में खुश होना है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने अल्लाह के नाम की पुख्ता कसमें खाई कि अगर उनके पास मखसूस निशानी आ जाए तो वो जरूर इस पर ईमान ले आएंगे। ऐ नबी कह दीजिए निशानियां तो सिर्फ अल्लाह के पास है, तुम्हें ये बात कौन समझाएगा कि बेशक जब वो निशानी आ जाएगी तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। और हम इसी तरह इनके दिलों और इनके निगाहों को फेर देते हैं जिस तरह ये पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए थे, और हम इन्हें इनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बता रही अगर निशानियां, यानी निशानियां कितनी नाजिल करे, कुरान खुद एक निशानी है, इसको देखे और बंदे ईमान ले आए। अगर जो ईमान नहीं लाता कुरान पर तो अल्लाह ताला बता रही कि हम उसको उसकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह उनकी मदद नहीं करता जो अपने आप की मदद नहीं करते। अब हमारा सातवां पारा खत्म हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, आठवें पारे की हम शुरुआत करते हैं इंशाअल्लाह। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और बेशक हम उनकी तरफ फरिश्ते। ये कौन सी आयत है? सूरह अनआम की आयत नंबर 111। यहाँ से आठवां पारा शुरू हो रहा बहनों, आठवां पारा शुरू हो रहा है। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रही कि यानी 111 से लेकर 165 तक कंटिन्यू, यानी सूरह खत्म होने तक, अनाम सूरह खत्म होने तक अल्लाह ताला ने तौहीद शिर्क के बारे में, तौहीद के बारे में बताया, शिर्क के बारे में बताया, और मुतफरिक अहकामात हैं इसमें। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सो अब देखिए आयत नंबर 111 से 121 तक के मैं मुख्तसर सी तशरीह करूंगी आपके सामने। 111 से 121 तक अल्लाह ताला फरमाता है उन मुशरिकों के ताल्लुक से कि वो हरगिज़ आप पर ऐ नबी ईमान नहीं लाएंगे, अगरचे कि अल्लाह फरिश्तों को नाजिल कर दे या मुर्दे उठकर भी उनसे कलाम करने लगे, ये ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि जहालत में डूबे हुए। और अल्लाह ने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा कर दिए थे, कुछ आदियों में से, कुछ जिन्नात में से। यानी हर दौर में नबियों के दुश्मन आए, और किस शक्ल में आए, यानी शैतान इंसानों और जिन्नों की शक्ल में नबियों के दुश्मन लोग हुए, और ये धोखा देने के लिए एक दूसरे को चिकनी चुपड़ी बातें करते थे और लोगों के दिलों में वसवसे डालते थे, है ना। मिनल जिन्नति वन्नास, हम पढ़ते ना सूरह नास में, वसवासिल खन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं हर नबी के दौर में हर वक्त जो है ना ये दुश्मन हमेशा मौजूद रहते, कयामत तक रहेगा ये शैतान अपनी दुश्मनी में, और लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करके वसवसा डालेगा। और जो भी आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल इस झूठ को, शैतान की तरफ से इस धोखे को, इस वसवसे की तरफ फौरी मायल हो जाते। किसके दिल? जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमें महफूज रखे। और अल्लाह ताला बता रही वो इस झूठ को और धोखे को पसंद करते थे क्योंकि इनके ख्वाहिश की चीज होती थी ना, इसीलिए वो पसंद करते थे, और वो इस तरह बुरे काम करते जाते थे, करते जाते थे। तो फरमाया अल्लाह ताला ने, कह दो कि मैं क्यों अल्लाह किसी और किसी को हाकिम तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने ये किताब तफसील के साथ नाजिल कर दी, और जिन लोगों को ये किताब दी गई ना वो जानते हैं कि ये किताब उनके रब की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई, जिसमें मुकम्मल सिद्क और सच्चाई और अदल है ये इस किताब में, फिर हम क्यों शैतान के धोखे में आए। और फरमाया अल्लाह ने, ऐ नबी अगर आप अहले जमीन की अक्सरियत की इताअत करेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बहका देंगे। अल्लाह अकबर। किसको बोल रही? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे अल्लाह ताला, ये इन तुतियो अक्सर मन फिल अर्द, अगर आप इताअत करेंगे किसकी जो अक्सरियत है जमीन में, अक्सर लोग बोलते नहीं, लोग बोलते ना अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सबको मैसेज दे रही है, लोग बोलते ना मतलब नहीं सब लोग वैसी कर रहे ना, सब वैसी कर रहे हैं लिहाजा हम भी करेंगे, नहीं अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐ नबी देख लो अक्सरियत की इताअत आप करेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बहका देंगे, वो अपने गुमान के सिवा किसी बात की पैरवी नहीं करते, यानी उनका मामला ये है कि वो सिर्फ अपने गुमान की पैरवी करते हैं उसके अलावा किसी की नहीं सुनते, बस उनकी जो बेकार की अटकल पच्चू बातें हैं ना उसके ऊपर वो चलते हैं, और अल्लाह बेहतर जानता है कौन गुमराह है और कौन हिदायत पर है। अच्छा यानी वो लोग जहालत भी करते और ये कहते कि नहीं हम ही सही है, तो अल्लाह ताला बता रहे ठीक है अल्लाह अल्लाह बता देगा तुमको कि कौन गुमराह है कौन हिदायत पर है। अब आयत नंबर 118 से 121 तक जो बात है उसके ताल्लुक से मैं पहले एक हदीस सुना दूं कि यानी अल्लाह सहाबा के पास, यानी सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया कि बाज नौ मुस्लिम जो जानवर को जुबह कर रही है, अल्लाह के रसूल हमें शक है कि उन्होंने अल्लाह का नाम ले रही कि नहीं ले रही, वो लोग अल्लाह का नाम ले रहे हैं या नहीं हमें शक है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मुसलमान का ज़बीहा हलाल है, हाँ अगर वो अमदन अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है तो ये गुनाह कर रहा है, फिस्क कर रहा है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें शक हो इस बात पर, यानी शक है कि मतलब मुसलमान ही है जुबाही कर रहा है लेकिन इस बात पे शक है कि अल्लाह का नाम लिया कि नहीं की, तो फिर तुम खाते वक्त अल्लाह का नाम ले लो बोल के। अब क्या हुआ, हुआ ये कि 118 से 121 तक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उस जानवर का यानी तुम खाओ उस जानवर का गोश्त जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, क्योंकि ये गैर अल्लाह के नाम पर जुबा नहीं हुआ, ये गैर अल्लाह के नाम पर जुबा नहीं हुआ, तुम्हारे लिए हलाल है, जुबा किया गया और अल्लाह का नाम लिया गया ये तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम ये गोश्त क्यों नहीं खाते। दरअसल शैतान है जो अपने दोस्तों के जहनों में शुबा डालता है, अल्लाह ताला फरमा रही कि उस दौर में भी होता था ये बात कि क्या करते थे, वसवसे डालते थे शैतान आके दिलों में, देखो उन्हें नौ मुस्लिम है उन्हें नाम लिया कि नहीं लिया कि अल्लाह का तुम्हारे लिए हलाल है कि नहीं है कि ये गोश्त, नहीं अल्लाह ताला बता रही बस गैर अल्लाह के नाम पे जुबा नहीं हुआ, वो जुबा हुआ और गैर अल्लाह के नाम पे नहीं हुआ तो तुम बिल्कुल खा सकते हो। ये जो लोग तुम यानी लोग शैतानों की शक्ल में आके या फिर जो है ना लोग शैतान के बहकावे में आके अपनी ख्वाहिशात से बगैर इल्म के लोगों को बहकाते हैं, तो बेशक अल्लाह ताला बता रही अल्लाह ताला ऐसे बगैर इल्म के बातें करने वालों को, हद से गुजरने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह खूब जानता है इनको, यानी खुद भी अमल नहीं करते और दूसरों को भी वसवसे डालते थे, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं देख लो गैर अल्लाह के नाम पे नहीं जुबा हुआ, बस बिस्मिल्लाह बोल के खा लो, जबीहा तो है जुबा तो हुआ, गैर अल्लाह के नाम पे नहीं है तो फिर वो जानवर का गोश्त तुम खा सकते हो। बहरहाल अल्लाह ताला ये आयत नंबर 121 के बाद आप देखिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि एक मिसाल दे के बता रहे हैं अल्लाह ताला कि एक ऐसा शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया, हमने इसके लिए नूर बना दिया, वो रोशनी में चल लेता है, मतलब क्या है अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे रहा, हिदायत से पहले तो वो राह गुम था ना, जैसे पिछले में अभी बताई ना हक नहीं है जिसके पास, तो अल्लाह ने उसको मुर्दे से मिसाल दी, फर्स्ट आयत जो हम पढ़े थे उसमें था ना कि वो मुर्दा है, यस्माउना जो सुनते हैं अल्लाह की बात वो सुनने वाले हैं और जो नहीं सुनते कुफ्र करते वो मुर्दे की मिसाल दी। फिर अल्लाह ताला बता रही कि कोई ऐसा शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया, हमने उसके लिए नूर बना दिया यानी हिदायत की रोशनी उसको दी जिसमें वो चलता है, क्या उस शख्स जैसा हो सकता है जिसका हाल ये है कि वो अंधेरों में पड़ा भटक रहा है, उससे निकलने का रास्ता ही नहीं है उसे। इसी तरह काफिरों के लिए इन कामों में कशिश रख दी गई जो वो करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बता रही कि ये लोग यानी अपनी कुफर की वजह से अंधेरों में भटक रही तो वो ईमान वाले उनके जैसे नहीं हो सकते, उनके उनके रास्ते अलग है, इनके रास्ते अलग हैं। अल्लाह ने क्या किया, हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया, वो बस्ती में अपने मकर फरेब का जाल फैला के बड़े खुश होते रहते लेकिन वो शऊर नहीं रखते कि अल्लाह की तरफ से उनकी ढील है, अल्लाह पकड़ेगा तो वो सख्त पकड़ पकड़ेगा। जब भी उनके पास निशानी आती थी तो वो कहते थे हम ईमान नहीं लाएंगे, यहां तक कि ऐसी चीज खुद हमें दी जाए जैसे रसूलों को दी गई नऊज़ुबिल्लाह, वो बोलते थे कि हमको डायरेक्ट नाजिल होना हमारे ऊपर, नऊज़ुबिल्लाह, बहाने हैं ये अल्लाह के रास्ते से हटने के। तो अल्लाह ताला बता रहा है अल्लाह बेहतर जानता है किसको रिसालत देना है किसको नहीं देना है, جن لوگوں نے جرم کیے انہیں اللہ بہت جلد ذلت والا عذاب دے گا اس کے ان کے مکر و فریب کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتا رہی اہم آیت ہے, نوٹ کری 125 فمن یرید اللہ, 125 آیت نمبر انام کی اہم آیت یاد نوٹ کریے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے بہنوں, دعائیں کریں. یہ موقع ہے ہم جو قرآن پڑھ رہی ہیں بیٹھ کر, شاید یہ موقع بعد میں آئے یا نہ آئے, اللہ کی بات کو سمجھنے کا اتنا وقت جو ہم دے رہی ہیں, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں ایسی قرآن سے چمٹنے والا بنائے. کیوں؟ کیونکہ یہی ہدایت کی روشنی ہے, اس کے علاوہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں جیسے ابھی بتایا گیا. تو دعائیں کریں بار بار, یہ اتنا پیارا موقع ہے اللہ کی باتوں کو سننے کا, سمجھنے کا, اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں بہنوں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ جس کو جو ہے نا یعنی ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے بہنوں. اللہ کسی کو اگر گمراہ کرنا چاہتا تو بول رہا اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو, اور پلیدی گندگی ناپاکی اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو ہم میں سے کون چاہیں گا کہ ہمارے دل ناپاک ہو؟ نعوذ باللہ, نہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے دل پاک ہو. اس زمن میں ایک حدیث آئی نا, صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے قرآن اور سنت کا فہم عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھلائیاں لوٹیں, یہ بھلائیاں لوٹیں بہنوں. یہ موقع ہے رمضان کا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ بھلائیوں کو لوٹنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو ہدایت یعنی اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے, اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان کے لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلامتی کا گھر ہے, اور وہ کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ دوست بن جائے گا ان لوگوں کا جو نیک اعمال کرتے ہیں, اور جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کی گروہ, اے انسانوں کی گروہ, یا معاشر الجن والانس, اے انسان اور جنوں کی گروہ, تم بہت زیادہ گمراہی کر رہے تھے. اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب, ہاں ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے تھے. ہے نا, یہاں پر شیطان انسان شیطانی کام جو کرتے ہیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لے رہے ہیں اور مست ہے زندگیوں میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک میعاد پہنچنے کی میعاد مقرر کر دی گئی تھی, ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا. فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تم یہ جو دھوکے میں تھے نا دنیا میں مست زندگیوں میں اپنے مست تھے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میری باتوں کا انکار کرتے تھے نا, لو آج اس آگ کا مزہ چکو جس میں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے جن اور انسانوں کی گروہ, کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ وہ میری آیت تم کو سناتا اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتا؟ اور واقع میں آئے تھے رسول, ڈرائے, اور آج بھی رسولوں والا کام امت محمدیہ کو سونپا گیا اللہ کی آیتوں سے نصیحت دلوانے کا. تو قالوا, وہ کہیں گے شہیدنا, ہاں اللہ ہم گواہ ہیں. اس وقت گواہی دینے کا کیا فائدہ, اس وقت یہ بولنے کا کیا فائدہ کہ ہاں ہم کو ڈرانے والا آیا تھا, قرآن تھا ہمارے درمیان موجود, مگر ہم عمل نہیں کرے, ہم خود گواہ ہیں. یعنی انسان خود اپنے اوپر گواہی دے گا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ اپنے آپ پر گواہی دے گا, اس کو اس کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ناحق کے ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہ غافل ہوں. اللہ تعالیٰ پہلے ان کو اویئر کرتا ہے, بات سمجھاتا ہے, نہیں سمجھتے تو پھر ساری بستی کو اللہ غارت کر دیتا ہے. اللہ اکبر.